श्रोताओं नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पत्रस की पहली पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है दुखों के मध्य आशा। श्रोताओ, हमें उम्मीद है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो चलिए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हो, प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रियों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उन सभी मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं आप सब का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पहला पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि यदि आप लुचपन में संसार का साथ नहीं देंगे तो वे आपको बुरा भला कहेंगे, परंतु वे प्रभु को लेखा देंगे अर्थात न्याय का सामना करेंगे। आप चिंता ना करें, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना करने के लिए सचेत रहें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक दूसरे से बहुत प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को आगाह करता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। प्रेम पाप को ढांप देता है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम फिर से आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हर एक जब आपके वचन में से सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, उनके हृदयों को छूने पाए, उनके जीवनों को बदलने पाए और आज का यह वचन प्रत्येक के जीवन में आशीष का कारण बन जाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय निराश हैं, परेशान हैं, अपनी नौकरी की तलाश में हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, पारिवारिक समस्याओं में हैं, तनाव में हैं, अपने जीवन को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। पिताजी, आप उन पर दया दृष्टि करें ताकि वे समझने पाए कि वे आपकी रचना है, आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, क्योंकि आपने उनके लिए, उनके पापों के लिए अपनी जान दी है ताकि वे बचाए जाएं। हाँ प्रभु, आप उनसे बातचीत करें ताकि वे आपके महान प्रेम को समझ सकें। आज अपने वचन के द्वारा हम सबको सिखाएं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए पहला पत्रस की पत्री 4 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। मेरे विचार में घर में किसी को आमंत्रित करने से भी अधिक कुछ होता है जिसे अतिथि सत्कार कहते हैं। जी हाँ, मेरे विचार में भ्रमणशील प्रचारक को किसी के घर में ठहराना और उनसे बातें करने में समय लगाना उचित नहीं है। उसे किसी होटल में कमरा लेना चाहिए कि उसे तैयारी और प्रार्थना करने का समय मिले। मेरा विचार यह भी है कि आपका अतिथि सत्कार है कि आप प्रचारक का होटल का खर्चा उठाएं। आप उसे भोजन के लिए घर भी बुला सकते हैं। इसलिए कहता है बिना कुड़कुड़ाए। जी हाँ, हमारा अतिथि सत्कार जोश के साथ हो, जोश से भरा हुआ हो, ना कि कुड़कुड़ा कर। हम सेवा सत्कार तो कर रहे हैं परंतु कुड़कुड़ा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन में हमने उन आशीषों को खो दिया जो मुझे और आपको मिलनी चाहिए। कई बार लोग बहुत उत्साह के साथ सेवा सत्कार तो करते हैं परंतु कुड़कुड़ाते हैं, तो इससे आपके लिए कुछ भी लाभ नहीं होता है। आप आनंद के साथ परमेश्वर के दास की सेवा करें तो निश्चय ही वह आपके जीवन में परमेश्वर अपनी आशीषों को देगा। पत्रस आगे कहता है, पहला पत्रस 4:10 में, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। कहता है जिसको जो वरदान मिला है। मेरे प्रियो, वरदान का अर्थ है आत्मिक वरदान। वरदान अनेक हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 में पौलुस कहता है कि देह एक है परंतु अंग अनेक हैं। कलीसिया एक देह है जिसमें अनेक सदस्य हैं और अनेक वरदान हैं। और मैं नहीं जानता कि आप क्या हैं और आपका वरदान क्या है, परंतु यह जानता हूं कि आप परमेश्वर की संतान हैं और आपको वरदान प्राप्त है जिसका उपयोग आपको एक दूसरे की सेवा में करना है, एक दूसरे की भलाई में करना है। और यही कारण है कि हमें कहा गया है कि हर एक को वरदान मिला है वह एक दूसरे की सेवा के लिए प्रयोग में लाया जाए। पहला पत्रस 4:11 में हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमीन। मेरे मित्रों, यदि कोई परमेश्वर का वचन न सुनाए तो उसे प्रचार मंच पर खड़े होने का अधिकार नहीं है। यदि हम सच्ची शिक्षा ना दें तो हम कभी न कहें कि हम बाइबल पढ़ा रहे हैं। यहां पर लिखा है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। आप यह ना कहें कि मुझे इसका प्रचार पसंद नहीं है, उसका प्रचार बड़ा अच्छा है। एक प्रचारक आपको भाता है तो दूसरे को भी किसी और का प्रचार भाता है। अतः प्रचारक को परमेश्वर द्वारा दिए गए सामर्थ द्वारा प्रचार करने दें, आप उसकी निंदा ना करें। वचन में लिखा है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमीन। मेरे प्रियो, पत्रस कहता है कि हमें वचन इस रीति से सुनाना है कि प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। अब पत्रस एक अलग प्रकार के कष्ट की चर्चा करेगा। उसके पाठक रोम के राजा नीरो के सताव के अधीन आने वाले थे। पत्रस उन्हें चेतावनी देता है कि उन पर ऐसा कष्ट आने वाला है, अनेक जन शहीद होंगे। हम शहीद तो नहीं होंगे परंतु कष्ट अवश्य उठाएंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 4:12। यहां पर लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि हमारे जैसा दुख किसी को नहीं है। मैं एक बार एक परिवार में वचन सुनाने के लिए गया क्योंकि वहां किसी ने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने कहा, हम पर ही ऐसा कष्ट क्यों आया है। उनके घर से निकलकर मैं एक और घर में गया, वहां भी आत्महत्या का ही मातम छाया हुआ था। आप जानते हैं उन्होंने मुझसे क्या कहा, ऐसा कष्ट हम पर ही क्यों आया है। हमारी मानसिकता है कि हम अपने ही कष्टों का अनोखा समझते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सोचते हैं कि हमारे जैसा कष्ट किसी दूसरे पर नहीं है, परंतु सच तो यह है कि यदि आप दूसरों के कष्टों को भी देखना आरंभ करें और अपने आप को उस जूते में डाल करके देखें, तब आपको पता चलेगा कि आपका कष्ट कम है, उसका कष्ट ज्यादा है। परंतु यहां पर कष्टों को मापने की बात नहीं कही जा रही है। मेरे मित्रों, मैं आपके कष्ट तो नहीं जानता, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि वे ऐसे नहीं हैं कि किसी और के ना हो। एकमात्र आप ही नहीं जिसे कष्ट है, औरों ने भी कष्ट उठाए हैं। पौलुस को प्रेरित नियुक्त करते समय प्रभु ने कहा था, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 16 पद में, मैं उससे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे, अर्थात पौलुस को, कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। पौलुस ने तो कष्ट वहन की सीमा पार कर दी थी। अतः आप अपने कष्टों को सबसे अधिक ना समझें। मुझे जब डॉक्टर ने बताया कि मुझे चर्म रोग है, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं सोचता था कि यह रोग दूसरों के लिए है। और डॉक्टर ने मुझे यह भी कहा कि आपको इससे छुटकारा नहीं मिलेगी, अर्थात जिंदगी भर आपको दवाइयां खानी होगी। मेरे प्रियो, कष्ट सबके लिए अलग है। यहां पर लिखा है, दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए। जी हां, वे उस समय कष्ट उठा रहे थे। वह अनोखी बात नहीं थी। कष्ट दुर्घटनावश नहीं आते हैं। कष्ट विश्वासी का सामान्य अनुभव है। अतः पत्रस कहता है कि विश्वासी का दुख उठाना एक आम बात है। इससे अनोखा आप ना समझे। कभी कभी हम कुछ परिवारों को देखते हैं जो बहुत आनंदित रहते हैं, परंतु जब उनके जीवन में कष्ट आता है तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि वे मसीही हैं, विश्वासी हैं, और परमेश्वर उनके जीवन में इन बातों की अनुमति देता है ताकि उनके विश्वास की मजबूती और हो। और हम बाहर की बातों में विश्वास न करके परमेश्वर की ओर बने रहें। यहां पर हम देखते हैं दुख रूपी अग्नि, अर्थात आग में ताया जाना। जैसा दाऊद कहता है कि परमेश्वर उसे ऐसा परख रहा है जैसे चांदी आग में पिघलाई जाती है। यह संपूर्ण धर्मशास्त्र में देखने को मिलता है। पत्रस भी इस अग्नि परख का अनेक बार उल्लेख करता है। उसने स्वयं कष्ट उठाए थे और अब क्रूस की मृत्यु उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। किसी ने कहा है, खदान और अंधकार से भट्ठी से निकलकर आता है। सोने का एक एक कण चूर चूर होकर निर्दयता से किस पर विश्वास करे। पिघलाकर ठोक कर जैसा कभी नहीं हुआ ऐसी अग्नि परीक्षा। सोने का क्या दोष था, उसे गीले और अंधकार में ही रहने देना था। यदि यही जीवन की महिमा है तो सोने की अपेक्षा मैल ही होता। मेरे मित्रों, हमारे कष्टों में परमेश्वर का उद्देश्य निहित है। पहला पत्रस 4 अध्याय के 13 पद में हम पढ़ते हैं, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हमें कष्टों में आनंद क्यों मनाना है? क्योंकि कष्ट हमें मसीह के आगमन के लिए तैयार करते हैं और हम उसकी निकटता को महसूस करते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 17 पद में पौलुस लिखता है, यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। मेरे विचार में हमें इस सत्य का सामना करना होगा कि मसीही जीवन का कोई छोटा रास्ता नहीं है। किसी ने कहा है, मसीही जीवन एक भोज है। प्रभु ने हमें उद्धार के भोजन तख्त पर बुलाया है, परंतु यह पिकनिक नहीं है। हमें उसके लिए और उसके साथ कष्ट उठाना है। एक दिन जब हम उसके समक्ष खड़े होंगे, तब हम अपनी परीक्षाओं का उद्देश्य जानेंगे, हम समझेंगे। मेरे प्रियो, मैं तो पौलुस के साथ महिमा में उसी स्तर पर बैठने से लजाऊंगा, क्योंकि उसने तो घोर यातनाएं सही हैं। आज कुछ लोग शमौन पत्रस की आलोचना करते हैं, परंतु हम एक दिन उसी की ओर निहारेंगे भी। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि कष्ट मसीही जीवन का भाग है, एक हिस्सा है। यदि हम मसीही जीवन जीना चाहते हैं तो हमें कष्ट उठाने होंगे। मेरे प्रियो, कष्ट आपका विकास करते हैं। आप मसीही विवाह और मसीही परिवार में कष्ट रहित जीवन के विषय अनेकों के विचार सुनते हैं, परंतु मैं इससे सहमत नहीं हूं। मसीही परिवार में कष्ट एवं दुख अवश्य आएंगे। मुझे स्मरण है कि मेरे एक मित्र के परिवार में पहले बच्चे की मृत्यु ने उन्हें एक दूसरे से कैसे निकट किया। कहने का अर्थ है कि वे एक दूसरे के बहुत करीब आए। वे अस्पताल में बैठकर रो रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। उस दुख ने निश्चय ही उनमें कुछ किया है, और यही कारण है कि वे आज प्रभु में आनंदित हैं। इतने बड़े कष्ट को सहना बहुत कठिन होता है, परंतु वे आज आनंदित हैं। पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 14 पद में आगे हम पढ़ते हैं, यहां पर फिर से लिखा हुआ है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। मेरे प्रियो, यह बड़ी विचित्र बात है, मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। मैं फिर से कहता हूं कि कष्ट परमेश्वर की संतान होने का प्रमाण है। आपका कष्ट सहना ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। यदि आप धनवान होते जा रहे हैं और आनंदमय जीवन जीते जा रहे हैं, कोई कष्ट आपके अंदर नहीं है, तो आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता है। वह चाहता है कि हर एक उसके निकटता में बने रहे। जब आप संसार की उन आशीषों को देखते हैं तो आपका मन उधर लग जाता है, आप उसकी ओर चले जाते हैं और परमेश्वर से आप दूर होते हैं। और यही कारण है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कष्ट आने देता है, ताकि हम उसकी निकटता में बने रहें, उसके प्रेम में बढ़ते चले जाएं। मेरे प्रियो, आप किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर का महिमान्वयन कर सकते हैं। एक बार एक भीषण भूकंप में एक महिला बाहर आकर परमेश्वर का स्तुति गान कर रही थी। शेष सब लोग या तो रो रहे थे या जीवन में पहली बार प्रार्थना कर रहे थे। किसी ने उससे पूछा कि ऐसे समय स्तुति गान का अर्थ क्या है। उसने कहा, मैं परमेश्वर का गुणगान इसलिए कर रही हूं कि मेरा परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि वह पृथ्वी को हिला सकता है। मैं आमीन कहता हूं। जी हां, बहुत कम लोग भूकंप जैसी आपदा में परमेश्वर का गुणगान कर पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी को हिलाना सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। पहला पत्रस 4 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराए काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। मेरे मित्रों, निंदा करना और किसी के बारे में झूठी बातें कहने के बाद ही पत्रस हत्या को सूची में रखता है, वह उनमें अंतर नहीं रखता है। पौलुस भी यही कहता है। पौलुस, पत्रस और याकूब सब बातों में एक मत हैं। वे एक ही सुसमाचार का प्रचार करते हैं जो एक ही जीवन उत्पन्न करता है। पत्रस कहता है कि हमें अपने ही पापों के कारण कष्ट नहीं उठाना है। मेरे मित्रों, परमेश्वर पाप और बुराई से परीक्षा नहीं लेता है। याकूब अपनी पत्री में इस बात को स्पष्ट करता है। पत्रस कहता है, तुम में से कोई भी हत्यारा होने के कारण दुख ना उठाए, दुख ना पाए। कहने का अर्थ यही है कि हम बुराई करके कष्ट उठाते हैं तो इसमें हमारी बहादुरी नहीं है। हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को रखना है, ताकि हम उसके नाम के कारण निंदित होते हैं, कष्ट उठाते हैं तो परमेश्वर के लिए हम आशीष के कारण ठहरते हैं। मेरे प्रियो, पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। मेरा मन उस विश्वासी के लिए रोता है जो कारावास में है, क्योंकि वह वास्तव में कष्ट उठा रहा है और वहां प्रभु यीशु का महिमान्वन करता है, उसकी गवाही देता है। परंतु पाप के कारण दुख उठाने वाला परमेश्वर के महिमान्वन का कारण नहीं है। जी हाँ, यहां पर दो प्रकार के लोग हैं। एक जो मसीह के कारण उसकी महिमा के लिए वो कैद हुआ है, कारावास में है, दुख उठा रहा है, परंतु दूसरा व्यक्ति हत्या करने के कारण, चोरी करने के कारण, व्यभिचार करने के कारण कारावास में है और वह परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा है। यहां पर देखना है कि आप किस रीति से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। पहला पत्रस 4 अध्याय के 17 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। मेरे प्रियो, वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। विश्वासी प्रभु यीशु के न्याय के आसन के सामने या समक्ष उपस्थित होंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय के 10 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। पौलुस विश्वासियों के बारे में कहता है कि उन्होंने इस देह में रहकर जो काम किए हैं उनका बदला उन्हें मिलेगा। हम सबको, बुरा करें या भला करें, प्रभु के न्याय के समक्ष खड़ा होना है और उसका बदला हमें मिलेगा। आगे पत्रस कहता है, जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने हमारे पापों का दंड चुकाया, और यदि हम उसके महिमान्वन के लिए जीवन व्यतीत नहीं करते हैं तो मेरे प्रियो, हमें दंड दिया जाएगा। यदि परमेश्वर अपनों ही को दंड देता तो परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुनाने वालों का क्या होगा। यह बहुत ही गंभीर बात है। जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसके आज्ञा अनुसार चलते हैं, उनके पापों के लिए भी, उनके गलतियों के लिए भी उनको दंड दिया जाएगा। तो उनका क्या होगा जो सुसमाचार सुनकर परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं उसको नहीं मानते हैं। मेरे प्रियो, आज मौका है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को आने दें। मेरे श्रोता मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप इस समय किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, परंतु यह निश्चित है कि परमेश्वर हमारे कामों का लेखा लेगा, चाहे भला हो या बुरा। क्या आज आप इसके लिए तैयार हैं? यदि आप पाप में जीवन जी रहे हैं तो आज मौका है कि आप परमेश्वर की ओर फिर जाएं, क्योंकि उसने आपके पापों की दंड अपने ऊपर में ले लिया है। वह आपके बदले में क्रूस पर मर गया ताकि आप अनंत जीवन को पाएं, मोक्ष पाएं, उद्धार पाएं। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यही कि उस पर विश्वास करना है और अपने पापों को उसके सामने में मान लेना है और माफी मांग लेना है, ताकि आप उस महान शांति और आनंद को, उद्धार को अपने जीवन में पा सकें। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है और आप अपने जीवन के लिए एक उत्तम निर्णय अवश्य लेंगे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
जिससे मैं